स्कंद पहला अध्याय 8 इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक का श्लोक क्रमांक 16। मामंस्थायेतदाश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः मामंस। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं। अतएव वे सदा हमारी कल्पना से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा परम पूर्ण है। भगवान शत प्रतिशत पूर्ण है, लेकिन अन्य लोगों में यथा नारायण, ब्रह्म, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बड़ा। वे अद्वितीय हैं। ओम मामंस्था ये तदाश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमये च्युते यदम मायया देव्या सृजतिवती हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। सुत गोस्वामी इस श्लोक को शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं और भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा किस प्रकार से की उसका विश्लेषण कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की कैसे माता उत्तरा वो भगवान के समक्ष जाती है याचना करते हुए, स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र परीक्षित जो उनके गर्भ में थे उनके लिए। और भगवान स्वयं वो माता उत्तरा के गर्भ में वो अवतीर्ण होते हैं महाराज परीक्षित को बचाने के लिए। और इसीलिए आगे चलकर उनको ये नाम दिया गया परीक्षित। देखिए, महाराज परीक्षित उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था जब वो अपने माता के गर्भ में थे और वो इतनी आतुरता से श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम सीनियर डिवोटी बन गए हैं और हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, गणना क्या होती है सीनियर डिवोटी बनने की, कि मैं भक्ति में 10 साल से हूं और मेरी हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा इतने सालों से हुई है, इसलिए मैं सीनियर डिवोटी हूं। तो यदि हम अपनी तुलना परीक्षित महाराज से करें तो परीक्षित महाराज वो केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही नहीं बल्कि भगवान का दर्शन साक्षात उन्होंने कर लिया जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमने भगवान का दर्शन किया जब हम अपनी माता के गर्भ में थे। तो उस दृष्टिकोण से परीक्षित महाराज कितने वरिष्ठ भक्त हैं। और जब वो पैदा हुए तो तुरंत पैदा होने के पश्चात वो परीक्षा कर रहे थे हर एक पुरुष को देख देख कर। महाभारत में वर्णन है कि परीक्षित महाराज वो महल में जब वो अपने घुटनों पर चलते थे उस आयु में, वो जो कोई पुरुष के संपर्क में आते तो उसकी धोती खींचकर देखना चाहते थे कि ये वही पुरुष नहीं है कि जो मैंने देखा था अपने माता के गर्भ में। और क्योंकि वो इस प्रकार से परीक्षा कर रहे थे हर एक पुरुष को देखने के लिए कि वो पुरुष कहां पर है, परम पुरुष, इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। तो यहां पर सूत गोस्वामी वो शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं कि भगवान ने अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र जो अमोघ था उसका निवारण ही नहीं किया बल्कि परीक्षित की रक्षा की। और देखिए किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं कि किसी स्त्री के गर्भ में जाकर अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वो उस गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए इन भगवान को कहा गया है अणोर अणियान महतो महियान, कि वही भगवान जब अघासुर के मुख में गए तो अघासुर को मारने के लिए भगवान ने इतना अपना रूप विस्तारित किया कि पूरा अघासुर का जो मुंह था वो भगवान से भर गया और अघासुर का जो मस्तिष्क वहां से भगवान बाहर आए। और आचार्यगण बताते हैं कि अघासुर को किस प्रकार की कृपा मिली भगवान से। अष्टांग योग में कहा गया है कि जो बहुत प्रगत योगी होते हैं वो जब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अष्टांग योग में एक विधि है, जब एक योगी अपना शरीर त्यागता है तो उसका जो आत्मा है उसके ब्रह्मरंध्र से बाहर आता है। ब्रह्मरंध्र यहां ऊपर अपने माथे पर होता है। तो जब एक योगी अपने योग साधना में वो परिपक्व हो जाता है तब जाकर उसका आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर आता है और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ माना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है और यदि उसकी आत्मा किसी और छिद्र से बाहर निकले तो मोक्ष तो दूर की बात है, किसी भी प्रकार की कोई सद्गति भी नहीं मिलती नीचे के जो छिद्र से बाहर निकलते हैं। यदि मुख से बाहर निकले तो कुछ आशा है, परंतु जो योगी होते हैं उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती। तो यहां पर अघासुर को देखिए, अघासुर जो एक असुर है जो मारने आया भगवान को और भगवान के पार्षदों को, इस अघासुर को किस प्रकार की मुक्ति भगवान ने दी कि न केवल भगवान स्वयं इसके ब्रह्मरंध्र से बाहर आए बल्कि उसकी आत्मा भी ब्रह्मरंध्र से बाहर आई अघासुर के। इसीलिए जब अघासुर का वध हुआ तो सारे देवी देवता नीचे आकर वो कीर्तन करना शुरू किए, और कोई राक्षस के लिए देवी देवता स्वयं नीचे आकर कीर्तन नहीं किए। बाकी जितने भी राक्षस भगवान ने मारे तो ऊपर से पुष्प बरसाते थे, पुष्प अभिषेक होता था भगवान का जब भी किसी राक्षस का भगवान वध करते थे। परंतु अघासुर का जब वध किया तो ये सारी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, यहां तक कि ब्रह्मा, शिव, ये सभी नीचे आकर भगवान का गुणगान किए कीर्तन के द्वारा। तो भगवान अणोर अणियान महतो महियान, वही भगवान अब इनके गर्भ में जा रहे हैं माता उत्तरा के, परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो जितना आवश्यक है अपना स्वरूप धारण करना उतना कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी वो कह रहे हैं सारे ऋषियों को, मां ममस्था ये तद आश्चर्य सर्व आश्चर्य मये अच्युते, कि भगवान की ये जो आश्चर्यजनक लीलाएं हैं ये इसे कुछ आश्चर्य मत मानो। सुत गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि मत समझो कि ये बहुत आश्चर्यजनक लीला है भगवान की। भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं, भगवान के लिए इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान को आश्चर्य में डाले, क्योंकि वो सक्षम है, वो आत्माराम है और सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। तो क्या भगवान को इस भौतिक संसार की कोई वस्तु या स्थिति या व्यक्ति आश्चर्य में डालेगा। एक श्री वैष्णव के आचार्य महाराज कुलशेखर, उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में ये जो शब्द है आश्चर्य, इसके विषय में कहा है कि वो किस स्थिति को देखकर आश्चर्य में पड़े हैं इस भौतिक संसार में। वो कहते हैं, आश्चर्य में तद हि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचरानी त्यक्त्वन्य वाच कुहक पठंती। महाराज कुलशेखर इस सुंदर श्लोक में वो गा रहे हैं कि मैं जब इस मनुष्य समाज को देखता हूं इस भौतिक संसार में तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ा हुआ हूं। आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके, और किस प्रकार का आश्चर्य वो कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं इस मनुष्य समाज में वो, सुधा परित्यज्य विषम पिबंती, कि एक प्रकार की सुधा है इस भौतिक संसार में। सुधा कहते हैं अमृत को, तो एक अमृत है इस भौतिक संसार में जिसका परित्याग ये लोग कर रहे हैं इस भौतिक संसार में सारे मनुष्य। और वो सुधा कौन कौन सी सुधा है, नामानि नारायण गोचराणी, भगवान श्री नारायण के जो नाम हैं, भगवान कृष्ण के जो नाम हैं, उसकी तुलना अमृत से की गई है, नामामृत। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान जो अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, इस अमृत का परित्याग ये मनुष्य समाज कर रहा है, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि यदि किसी को अमृत दिया जाए और वो कहे कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कई बार जो चीज हमें अच्छी लगती है और यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं तो हम आश्चर्य में चले जाते हैं। यदि हमें खीर पसंद है और कोई व्यक्ति कहता है कि खीर खीर में क्या, कोई ऐसे गुण तो दिखाई देते नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर जब वो बांग्लादेश में थे तो वो भगवान के लिए भोग बना रहे थे, बर्मा में थे वो, तो भगवान के लिए भोग बना रहे थे और भोग में वो पूरियां तल रहे थे घी में। तो उस देश में घी की तली हुई पूरियां का किसी को स्वाद नहीं पता, तो जो पड़ोसी थे वो आकर शिकायत कर रहे थे कि क्या बदबू फैला रहे हो तुम। अब देखिए, जब घी में पूरियां तली जाती हैं तो इन्हें वो बदबू अनुभव हो रही थी। और उस देश में बताया गया है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं, एक प्रकार का आचार है जो वो बहुत पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं नकिल। और आप जानना चाहेंगे किस प्रकार का आचार है जो वो पसंद करते हैं उस देश में। जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कीड़े जो मर जाते हैं, उनको वो एकत्रित करते हैं किसी पात्र में, और जब कोई उत्सव होता है उस देश में तो उत्सव के समय इसे बाहर निकाला जाता है खाने के लिए। कईयों का चेहरा मैं देख रहा हूं, आप लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति और बहुत से व्यक्ति, पूरा देश इस प्रकार का कोई आचार भी उसका आस्वादन करता है, और इसके विपरीत घी में तली हुई पूरियां वो बदबू कहते हैं वो लोग। तो यहां पर जिसे भगवान के नाम और उनके गुण, उनकी लीला, उसका ज्ञान है, तो वो महाराज कुलशेखर कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में मैं जब मैं देखता हूं तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि ये लोग परित्याग कर रहे हैं इसका। और केवल इतना ही आश्चर्य नहीं, इतना तो ठीक था कि वो लोग सुधा का परित्याग कर रहे हैं, नामामृत का परित्याग कर रहे हैं, बल्कि इससे भी अधिक आश्चर्य उन्हें क्या हो रहा है, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, कि एक तो अमृत का परित्याग किया परंतु इसके विपरीत क्या कर रहे हैं, विषम पिबंती, विष को स्वेच्छा से पी रहे हैं। जानिया शुनिया विष खाइनु, नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया कि जानबूझ के, पता है कि ये विष है परंतु जानबूझ के उस विष को पी रहे हैं। और वो विष क्या है, वो विष है इंद्रिय भोग इस भौतिक संसार का, इंद्रिय तृप्ति। जीव गोस्वामी, उन्होंने अपनी एक टीका में कहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक है विष और एक है विषय। तो जीव गोस्वामी पूछते हैं कि इन दोनों में अधिक जहरीला कौन है, विष और विषय। विषय जानते हैं किसे कहते हैं, विषय वस्तु, इंद्रिय भोग के लिए जो विषय वस्तु होती है, जैसे आंख के लिए कोई रूप, जिह्वा के लिए कोई खाने का पदार्थ, नासिका के लिए कोई गंध, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, इसे कहते हैं विषय वस्तु। तो वो पूछ रहे हैं कि विष और विषय में ज्यादा खतरनाक कौन है, कौन है, विष, विषय, क्यों? जो विष है वो एक ही बार मारेगा व्यक्ति को, और विष कब मारेगा, जब उसे शारीरिक रूप से अंदर लेगा कोई व्यक्ति। केवल विष को देखने से कोई व्यक्ति नहीं मरने वाला, केवल विष के विषय में सोचने से कोई व्यक्ति नहीं मरने वाला, जब उस विष को, और आजकल कलयुग में अंदर भी लेने से पता नहीं लोग मरते कि नहीं। मैं जब बचपन में एक परिवार में एक हमारे क्लास की एक लड़की थी जो फेल हो गई थी, तो उसने वो कुछ विष खा लिया फेल होने के बाद, तो उसका दुर्भाग्य कुछ नहीं हुआ, वो विष खाने से उल्टा नाम खराब हो गया पूरे कॉलोनी में। तो आजकल पता नहीं कलयुग में विष भी काम करता है कि नहीं, परंतु जो विषय है वो अवश्य काम करता है। तो विष को अंदर लो तब जाकर वो किसी व्यक्ति को मारेगा, परंतु विषय ये ऐसा जहर है कि भगवान कहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसाम, केवल ध्यान करने मात्र से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामः क्रोधोद्विजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक भगवान ने कहे भगवद गीता में। शुरुआत किससे की? ध्यान से, ये पहला शब्द है, और अंत किया है प्रणश्यति। अंतिम शब्द है ये दूसरे श्लोक का प्रणश्यति, और उसके बीच में जो कुछ हुआ वो डिटेल है। तो विषय के ऊपर ध्यान करने मात्र से भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का पतन निश्चित है। जब किसी विषय वस्तु को कोई व्यक्ति सोचता है, ध्यान करता है, सुनता है, देखता है, ये सब के वजह से जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि विषय जो है वो अधिक जहरीला, खतरनाक है विष से। तो ये आश्चर्य कर रहे हैं महाराज कुलशेखर, आश्चर्य मेतद ही मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। तो यहां पर सुत गोस्वामी वो कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि आश्चर्य मत करो, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान इतने अद्भुत कार्य करते हैं, परंतु भगवान के लिए ये अद्भुत नहीं है, हमारे लिए अद्भुत हो सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में एक जगन्नाथ जी के भक्त हुए थे, और उन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं जगन्नाथ जी के गुणगान करते हुए, और अपनी एक प्रार्थना में, अपने गीत में वो लिखते हैं, जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जगन्नाथ जी से कि हे जगन्नाथ, मैं इतनी दयनीय अवस्था में हूं, असहाय अवस्था में हूं, मैं इतनी पीड़ा में हूं, इतने दुख में हूं, तकलीफ में हूं, कठिनाई में हूं, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया ये दुख, ये कठिनाइयां, ये तकलीफें दूर कीजिए। तो कोई व्यक्ति यदि इस प्रार्थना को सुनेगा तो क्या सोचेगा? कि ये कोई शुद्ध भक्त है? शुद्ध भक्त के तो लक्षण नहीं दिखते। कुंती महारानी तो कहती है कठिनाइयां दो, तो ये कैसी भक्ति है कि ये भक्त भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कठिनाइयां दूर करो। तो ये भक्त आगे अपनी प्रार्थना में कहते हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भगवान, आपके लिए मेरी कठिनाइयां दूर करो। समझ में आए? नहीं समझ में आए? वो आगे फिर समझाते हैं कि क्यों। वो कहते हैं कि पूरे संसार में आप विख्यात हैं कि आप अपने भक्तों की कठिनाइयां दूर करते हो, और यदि आप नहीं करोगे तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो मैं आपका नाम बनाए रखना चाहता हूं कि आपका जो नाम है भक्त वत्सल, उसे मैं बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी कठिनाइयां दूर कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कठिनाइयों से। तो ये प्रार्थना हम भी कर सकते हैं। जैसे इस्कॉन के एक मंदिर में हम वहां पर गए थे पाश्चात्य देश में, तो वहां पर उन्होंने रोज मंगल आरती के बाद कुंती महारानी की ये प्रार्थना शुरू की, विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, ये प्रार्थना शुरू की। और फिर देखा कि इतनी कठिनाइयां शुरू हुई, इतनी विपदा शुरू हो गई मंदिर में, सरकार से प्रॉब्लम, यहां से प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम, सब जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो फिर सोचा कि हम प्रार्थना तो कर रहे थे, परंतु हम कुंती महारानी के स्तर पर नहीं कि जब विपदा आ जाए तो उसे उस दृष्टिकोण से लें। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान के क्या गुण हैं। इसलिए वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं वो कभी आश्चर्य नहीं करते भगवान के ये सारी अद्भुत लीलाओं को जब देखते हैं सुनते हैं, तो कभी आश्चर्य नहीं करते वो, उल्टा भगवान भगवान आश्चर्य करते हैं वहां पर। और सनातन गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं एक सुंदर श्लोक में, वो कहते हैं कृष्णेन न व्रज जन किल मोहितास्ते तैसव्यमोहि भगवान इति सत्यमेव। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान जब वृंदावन में अपनी लीला प्रारंभ की उन्होंने, कृष्णेन न व्रजजन, व्रजजन जो ब्रजवासी, किल मोहितास्ते, वो बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए भगवान के अद्भुत लीलाओं को देखते हुए। हर दिन भगवान किसी न किसी राक्षस का वध करते थे वृंदावन में, और सनातन गोस्वामी वो अपनी सारार्थ दर्शनी में कहते हैं कि भगवान अरेंजमेंट करते थे कि राक्षस आए हर दिन, भगवान का ही प्लान था कि राक्षस आए हर दिन। और जो ग्वाल बाल के साथ भगवान लीला कर रहे थे तो उनके साथ जाकर किसी राक्षस का वध करते तो एक बहाना था ताकि ग्वाल बाल जो इतने भगवान की लीला में मग्न रहते तो वो खाना पीना सुध-बुध भूल जाते अपनी। तो भगवान चाहते थे कि ये लोग कुछ खाए पिए भी, नहीं तो मेरी लीला में इतने मग्न रहते हैं कि भूल जाते हैं खाना पीना। होता है कभी ऐसे हमें? हम सुध-बुध भूल जाते हैं भगवान की खाते समय। परंतु यहां पर भगवान ने देखा कि वृंदावन के सारे ग्वाल बाल ये मेरी लीला में अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, तो इसीलिए किसी राक्षस को भेजते थे भगवान कि राक्षस जब बीच में आएगा और मैं जब राक्षस का वध करूंगा तब जाकर कुछ उसमें विच्छेद होगा उनकी लीला में, और तब जाकर मैं इन्हें कुछ भोजन प्रसाद खिला सकता हूं। और राक्षस का जब वध करूंगा तो ये लोग सब जो उस वध को देखेंगे मेरे साथ भी भाग लेंगे उस लीला में, तो थोड़ा एपेटाइट होगा खाने के लिए। तो रोज भगवान इस प्रकार से योजना करते थे कि कोई आए राक्षस और भगवान वध करे। तो ये सारे जो ग्वाल बाल और माता यशोदा, गोपियां, ब्रजवासी, न व्रज जन किल मोहितास्ते, बिल्कुल भी ये मोहित नहीं थे भगवान की ये सब आश्चर्यजनक लीला। देखिए क्या आश्चर्यजनक लीला भगवान ने की, पुतना का वध किया जब भगवान केवल 6 दिन के थे। अब देखिए 6 दिन का बालक, वो आप समझ भी नहीं सकते कि उसके उसका मुंह कहाँ है, सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सब एक जैसा ही दिखता है। 6 दिन का बालक कैसा दिखता होगा? और पुतना, पुतना 6 दिन की नहीं थी। पुतना कितनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी पुतना? 12 मील लंबी पुतना। यहां से 12 मील कितना है अपने सेंटर से? नासिक रोड आधा त्रंबक कह रहे हैं कि वो 12 मील है, तो आप लोग जानते हैं। तो इतनी बड़ी थी पूतना, और भगवान केवल 6 दिन के शिशु। तो देखिए, जब भगवान ने पूतना का वध किया और इतनी विकराल पूतना वो गिरी पड़ी है अब, और वही पूतना जब उसने प्रवेश किया वृंदावन में तो एकदम सुंदर स्त्री के समान, और वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि रोहिणी और माता यशोदा ने सोचा कि ये साक्षात लक्ष्मी आई है नारायण का दर्शन करने के लिए। और वो नारायण कौन? कृष्ण नहीं, उनके जो डीटी थे नारायण घर में, उनका दर्शन करने के लिए। तो ये सोच रहे थे, और जब लक्ष्मी को समझकर उसे प्रवेश दिया अंदर, और अब ये उनके अनुसार जो लक्ष्मी थी दुर्गा के रूप में आ गई। इतनी बड़ी और 12 मील लंबी इसका विकराल स्वरूप। तो ये सारी जो गोपियां, माता यशोदा और बाकी गोपियां, उस समय वहां पर कोई वरिष्ठ पुरुष नहीं थे, ज्यादातर सब गोपियां ही थी वहां पर जब पुतना का वध हुआ। और नंद महाराज तो मथुरा में थे वसुदेव के साथ, और वसुदेव ने कह दिया था, एक सिग्नल दे दिया था कि वहां पर कुछ हो रहा है, जल्दी जाओ। तो वो अपने रास्ते में थे फिर से वापसी में। तो यहां पर देखिए, अब इतनी बड़ी ये पूतना, अब ये मरी नहीं थी बिल्कुल, थोड़ी जीवित थी ये, और इतनी विशाल इस पूतना को गिरा पड़ा देखकर, अब देखिए कि यदि कोई भक्त भी है भगवान का तो थोड़ा अपने आप को पहले संभालेगा। ये पता नहीं पूतना ने एक हाथ ऐसे कर दिया हमारे ऊपर, इतना बड़ा इसका शरीर है, एक हाथ इतना बड़ा है, तो हम तो 100 लोग कुचल कर उसी के अंदर मर जाएंगे। तो सबसे पहले देखा सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में कहते हैं, अकुटो भयम क्रीडंतम, कि एक तो वो भगवान, खैर वो तो कोई भय नहीं था उनको, तो बिना किसी भय के क्रीडंतम वो क्रीड़ा कर रहे थे पूतना के शरीर के ऊपर। और उन्होंने देखा कि अब एक नया मैदान मिला है खेलने के लिए, तो ये सोचते हुए भगवान क्रीड़ा कर रहे थे पूतना के ऊपर। और ये सारी जो गोपियां थी, ये नहीं कि अब पूतना को देखकर सब चर्चा कर रही हैं वहां पर कि ये पूतना है कौन, या ये कौन ऐसी राक्षसी है यहां पर, या पहले इसका फोटो खींचो, मथुरा के पेपर में डालना चाहिए कि वृंदावन में इतनी बड़ी राक्षसी आई। तुरंत वो ऊपर चढ़ गई पूतना के शरीर के ऊपर कृष्ण को बचाने के लिए। ये नहीं कि अरे ये ही कृष्ण ने इसे मारा है तो हम क्या बचाएंगे इस कृष्ण को। नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? कृष्ण को बचाना। तो तुरंत वो ऊपर चढ़ गई और कृष्ण को नीचे उतारा, और फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है वृंदावन का? गायों को लेकर आए। तो जो गोपुच्छ है उसको भ्रमण आदि भी उसको घुमाने लगे, कृष्ण के शरीर के चारों तरफ गोपुच्छ को घुमाने लगे, फिर गोरज को चारों तरफ कृष्ण के शरीर पर लगा दिया, गोमूत्र गोबर से लेप किया। यदि कोई डॉक्टर ये पढ़ेगा कि ये वृंदावन का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, हालांकि ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो तुरंत वो अलग अलग मंत्र उच्चारण करने लगे, और मंत्र क्या उच्चारण कर रहे थे सारी गोपियां, माता यशोदा और रोहिणी, कृष्ण के अलग अलग हाथों को पकड़ते हुए नारायण का मंत्र, फिर नारायण के जो अलग अलग विस्तारित स्वरूप हैं उनका मंत्र, और अपने जो घर में जो नारायण के डीटी हैं उनको जाकर प्रार्थना करने लगी कि कृपया आप हमारे शिशु को बचाइए। ये जानते नहीं कि वो जो नारायण हैं आपके घर में, उनके स्रोत हैं यहां पर। तो बिल्कुल उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि ये हमारा जो बालक है यही सब कुछ कर रहा है। और हो सकता है कि कोई तर्क लगाकर ये कहे कि क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कृष्ण को पूतना का वध करते हुए, परंतु बाकी बहुत से असुरों का, अभी गोवर्धन, गोवर्धन को तो सब साक्षात देख रहे थे, कोई डाउट नहीं था कि इसे कौन उठाया हुए है। बीच में थोड़ा मधुमंगल और सुबल और ये इत्यादि ये थोड़ा संशय कर रहे थे कि कृष्ण ही उठाए कि क्या हो रहा है, कि गोवर्धन इतने समय से ऊपर कैसे है। तो मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि बहुत समय हो गया, एक दो दिन बीत गया इसे उठाकर खड़े हो, थोड़ा मेरी जो छड़ी है, वो एक छड़ी रखते थे मधुमंगल, तो उन्होंने कहा कि मेरी छड़ी पर दे दो, मैं संभाल लूंगा, मेरा जो ब्रह्म तेजस है, मधुमंगल ब्राह्मण है, मेरे ब्रह्म तेजस से मैं इसे ऊपर उठाकर रखूंगा, चिंता मत करो, छोड़ दो। हाथ दुख रहा होगा, उंगली दुख रही होगी, तो भगवान ने कहा ठीक है प्रयास करो थोड़ा। तो अपनी छड़ी लगा रहा है एक तरफ से, तो भगवान ने थोड़ा नीचे कर दिया, और जैसे ही नीचे किया तो मधुमंगल समझ गए, धराशाही हो गए पूरा नीचे, और छड़ी के साथ सब कुछ उनका नीचे गिर गया, और सभी हंसने लगे उनके ऊपर। तो मधुमंगल फिर सबको देखते हुए कहते कि हंसने की जरूरत नहीं है, कि मैं कुछ लीला कर रहा हूं। तो भगवान गोवर्धन उठाए हैं इन सबके सामने, और माता यशोदा को एकमात्र चिंता यही है कि ये हथेली, ये उंगली दुख रही होगी भगवान की। तो माता यशोदा ऊपर चढ़कर इसको मसाज करती है ऊपर जाकर, और माता यशोदा की चिंता क्या है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं अभी तक, ये चिंता नहीं कि ये गोवर्धन उनके ऊपर भी गिर जाएगा एक दिन, अगर अपने कृष्ण को केवल एक बालक मान रही है वो, तो ये गोवर्धन भी गिर सकता है ना, कि अभी भगवान नहीं है तो बालक है तो हाथ से सरक कर गिर सकता है गोवर्धन, वो चिंता नहीं है। चिंता है कृष्ण का हाथ दुख रहा होगा, उंगली दुख रही होगी, कुछ खाया नहीं इतने समय से, यही चिंता। और जब भी भगवान किसी राक्षस का वध करते तो माता यशोदा आकर सबसे पहले सब अंगों को देख लेती कि कोई अंग में कोई चोट तो नहीं पहुंची, ये सब। और इसलिए इस श्लोक में सनातन गोस्वामी कहते हैं व्रज जन न किलम मोहितास्ते, जो ब्रजन थे वो बिल्कुल भी मोहित नहीं हुए, परंतु तैस्य व्यमोहि भगवान इति सत्यमेव। कि सत्य बात क्या है कि वो भगवान, इसलिए सनातन गोस्वामी उनको भगवान उल्लेख कर कह रहे हैं श्लोक में, भगवान कौन, जिनके अंदर सारे ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य पूर्ण, वो भगवान जब वृंदावन में आए तो वो व्यमोहित हो गए ब्रजवासियों का प्रेम देखकर। तो यहां पर जैसे सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम आश्चर्य मत करो भगवान की सारी लीलाओं को देखकर सुनकर, उल्टा सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भक्त का प्रेम है उसको देखकर भगवान आश्चर्य में चले जाते हैं, और इतने आश्चर्य में चले जाते हैं कि भगवान को एक अवतार लेना पड़ता है उस आश्चर्य को समझने के लिए, और वो कौन सा अवतार है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। कि भगवान श्री कृष्ण इतने आश्चर्य में चले गए कि ये श्रीमती राधा रानी ये इतना आनंद क्या अनुभव कर रही है मेरे संग में या मेरी भक्ति में, तो वो समझने के लिए भगवान को राधा भाव द्युति सुविलितम, कि वो भगवान को श्रीमती राधा रानी का भाव लेना पड़ा, और तब जाकर भगवान समझ पाए कि ये जो मैं आश्चर्य कर रहा था ये वास्तविक रूप में मेरे जो भक्त हैं वो मुझसे ज्यादा, जैसे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में लॉस एंजलिस के मंदिर में थे, और वहां पर इस्कॉन का जो इनकॉर्पोरेशन डे था जिस दिन इस्कॉन की स्थापना हुई उसका एक समारोह मना रहे थे, तो एक बहुत बड़ा केक बनाया हुआ था, तो वो केक लाकर श्रील प्रभुपाद जी के सामने रखा और प्रभुपाद जी उस केक को देखकर कहने लगे कि देखो, हम जो भक्त हैं हमारे पास कुछ नहीं था और अब देखिए हमारे पास भगवान की कृपा से क्या क्या है। सब प्रकार के भोग विलास हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हैं। केक को देखते हुए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि एक जो सेवक होता है और जो मालिक होता है, जब सेवक मालिक की सेवा करता है तो मालिक का जो इंद्रिय भोग है उससे भी अधिक उसको इंद्रिय भोग मिलता है। तो एक भक्त, वो प्रभुपाद जी को उन्होंने पहले कहा कि क्योंकि हम कृष्ण को ये सब कुछ अर्पित कर रहे हैं इसलिए हम भी कृष्ण के समान ही आनंद में हैं, या कृष्ण के समान ही हम भी भोग कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं कृष्ण हमें दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसे करेक्ट किया और ठीक करते हुए कहते, नहीं, एक जो भक्त है वो कृष्ण से ज्यादा आनंद में रहता है और इसीलिए भगवान उस आनंद का अनुभव करने के लिए कई आचार्यों ने उदाहरण दिया है। जैसे तुकाराम महाराज ये उदाहरण भी देते हैं कि जैसे एक कमल का पुष्प है वो स्वयं अपनी गंध को नहीं सूंघ सकता, एक कमल जो है वो अपने ही गंध को नहीं सूंघ सकता, परंतु एक भंवरा जो है वो पूर्ण प्रकार से आस्वादन करता है उस कमल के पुष्प की गंध का। तो उसी प्रकार से तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान जो है उनके अंदर सब गुण हैं, वो आनंद घन हैं, परंतु उसका आस्वादन कौन करता है? भक्त। तो भक्त जो है वो ज्यादा फायदे में। जैसे कि एक और उदाहरण दिया गया है जिह्वा का और एक रसगुल्ला का। तो जो रसगुल्ला है दिखने में बहुत सुंदर है, मधुर है, स्पर्श करने में बहुत नरम है, सब कुछ है, परंतु वो रसगुल्ला अपने आप का आस्वादन नहीं कर सकता। और एक जिह्वा की तुलना यदि रसगुल्ले से की जाए तो जिह्वा कोई दिखने में बहुत सुंदर नहीं दिखती। यदि आप अपनी फोटो निकालो जिह्वा बाहर निकालते हुए तो बहुत सुंदर फोटो नहीं आएगी। वो कभी देखा है कि लोगों को कहा जाता है स्माइल फोटो के पहले, प्लीज स्माइल, केवल स्माइल करने के लिए कहा जाता है। कोई फोटोग्राफर यही नहीं कहता कि जिह्वा बाहर निकालो हंसते हुए, भद्दा लगता है कोई व्यक्ति जब जिह्वा बाहर निकालता। डॉक्टर जब कहता है जिह्वा बाहर निकालो, टॉर्च से देखता है अंदर, तो जिह्वा जो है उसके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं है इतने रसगुल्ले की तुलना में, परंतु वो जिह्वा सारा आस्वादन करती है उस रसगुल्ला का। तो उसी प्रकार से एक भक्त जो है जिसके अंदर पूर्ण प्रकार के भगवान के गुण नहीं है परंतु एक गुण है जिह्वा के अंदर, एक गुण है और वो है आस्वादन करने की शक्ति। बस वो एक गुण के कारण वो जिह्वा जो है रसगुल्ला का पूर्ण आस्वादन कर सकती है। उसी प्रकार से भक्त के अंदर एक गुण है और वो है भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम, और वो एक गुण के वजह से पूर्ण आस्वादन एक भक्त ही कर पाता है भगवान का। तो एक मायावादी श्रील प्रभुपाद जी से वार्तालाप कर रहा था, तो मायावाद के अनुसार वो कह रहा था कि हम सब भगवान हैं, ये हैं, एक हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, सब उनके शब्द हैं मायावादियों के, विलीन हो जाना, एक हो जाना, एकाकार, एकात्म, निर्विकार, निर्विशेष, ये सारे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम लोग तो केवल भगवान से एक होने के लिए प्रयास कर रहे हो, हम तो भगवान से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो थोड़ा डर गया, बोले ये तो पहली बार सुना हमने। ये भगवान से ऊपर जाने। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति, भक्ति योग में जैसे यहां पर श्रील प्रभुपाद जी हालांकि तात्पर्य में लिखते हैं, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा है, परंतु प्रभुपाद जी कहे हैं कि जो भगवान का भक्त हो जाता है, अनन्य भक्त, वो भगवान से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान फिर उसके सेवक बन जाते हैं, भक्त वत्सला। तो इसीलिए यहां पर इस श्लोक में सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को यह कह रहे हैं कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो आत्माराम है, इसीलिए वो जो कुछ करते हैं वो वाजबी है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। कि एक जो बहुत बड़ा व्यक्ति है यदि वो बड़ा कार्य न करे तो आश्चर्य होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, बहुत सुंदर वाक्य कहा, कि कुछ भक्त जो थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो भक्ति के पथ से थोड़ा विपथ हो गए थे, भक्ति नहीं कर रहे थे। तो कुछ भक्त आकर प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ये कैसे संभव है कि कोई भक्ति के पथ में आया है, सब कुछ जानता है कि भक्ति की महिमा क्या है और इंद्रिय भोग का परिणाम क्या होगा, फिर भी वो कैसे छोड़कर जा सकता है भक्ति का पथ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति के पथ में कौन आकर छोड़कर जा रहा है इसको आश्चर्य मत करो तुम, डोंट बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी विल लीव। प्रभुपाद जी ने कहा आश्चर्य करो कि कितने टिके रहेंगे, बी सरप्राइज बाय हाउ मेनी स्टे। तो इसीलिए हमारे एक भक्त मंदिर में बता रहे थे कि उनके एक कोई बहुत निकटतम मित्र, जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, वो अब हमारे मंदिर में आना शुरू किया है, जप करना शुरू किया है। तो ये जो हमारे भक्त हैं, ये इसने जब देखा कि ये मंदिर में आना शुरू किया, किसी और के संपर्क से मंदिर में आया, और उसे पता नहीं था कि ये भी हरे कृष्णा में ही है। तो ये भक्त ने जब देखा ये बड़े व्यक्ति को मंदिर में आकर अब जप कर रहा है, तो ये कह रहा था कि बड़ा आश्चर्य है कि ये व्यक्ति, मैं इसे अच्छे से जानता हूं, किस प्रकार की आदतों में है कि ये व्यक्ति मंदिर में आ रहा है और भक्ति कर रहा है। तो हमारे एक भक्त ने इस व्यक्ति को कहा, इस डिवोटी को कहा कि आश्चर्य मत करो कि वो कैसे भक्ति में आ गया, आश्चर्य करो कि हम लोग कैसे भक्ति में टिके हुए हैं, इतने सारे अनर्थ, इतनी बुरी आदतें और इतनी बुरी धारणाएं, इतनी आसक्ति के बावजूद हम रोज भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, रोज भगवान का नाम ले पा रहे हैं, रोज भगवान का प्रसाद खा पा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं। तो यदि हम अपने जीवन में रोज देखें तो रोज एक आश्चर्य हम देखेंगे कि आज भी मैं भक्त हूं, या आज भी मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं, या आज भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है कि मैं दास हूं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में टिके रहें, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? नहीं, वो नारायण की आराधना कर रहे हैं किस लिए? जैसे माता यशोदा नारायण की आराधना करती है, एकमात्र नारायण भी नहीं, वो तो कात्यायनी की आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं? कृष्ण की रक्षा करने। तो उनका प्रेम इतना गाढ़ा है कि वो चाहे नारायण हो, चाहे कात्यायनी हो, चाहे कोई भी हो, यदि हमारे कृष्ण की रक्षा ये ड्यूटी करेगी तो इसकी आराधना हम करेंगे। तो उनका पर्पज क्या है? श्याम सुंदर कृष्ण। अंततः श्याम सुंदर कृष्ण की रक्षा होनी चाहिए, श्याम सुंदर कृष्ण के सब कुछ होना चाहिए, और चाहे हम किसकी भी आराधना करें तो बहुत बड़े स्तर पर हैं वो। इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहे हैं कि हम डायरेक्टली भगवान, प्रभुपाद जी यहां तक कहे हैं कि हमें राधा कृष्ण के जो आराधना है वो लक्ष्मी नारायण की जो आराधना होती है उसके मूड में करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए, जैसे हमारे मंदिर में बहुत पहले कोई भक्त थे तो वो अपने आप को बहुत प्रगत भक्त मानते थे कि मैं राग भक्ति के स्तर पर हूं, और कई बार जब भगवान का ड्रेसिंग करते थे वो, तो कुछ गलती हो गई। एक बार उनके हाथ से जो शालिग्राम है वो गिर गए, तो कहते हैं कितने नटखट हो तुम, हाथ में टिके नहीं रह सकते। तो कोई व्यक्ति जब अपने आप को उस स्तर पर जबरदस्ती भेज रहा है तो फिर उसका परिणाम बहुत दुष्कर होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी जो आराधना है वो भगवान, यदि राधा कृष्ण की भी आराधना हम कर रहे हैं, उनके ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, तो मूड क्या होना चाहिए? जो लक्ष्मी नारायण वर्षिप का मूड है वो मूड होना चाहिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें भगवान श्री श्याम सुंदर की भक्ति दी गई है, परंतु हमें अपने आप को उस स्तर पर नहीं मानना चाहिए। इसलिए गोपियों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, पदचिन्हों पर चलना है उनके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।